लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव अपने स्वभाव के अनुरूप अपने को भारी कार्यों और उत्तरदायित्वों से दूर करने की कोशिश करता है। वे कार्य जिनमें हमें अधिक मेहनत और लगनता की जरूरत होती है, हम स्वाभाविक रूप में उन कार्यों से भागने की चाह रखते हैं। वे कार्य और उत्तरदायित्व जिनमें हमें एक तरह से जोखिम और थोड़े खतरे का एहसास होता है, हम अपने को उनसे दूर रखना ही बेहतर समझते हैं। तो वहीं वे कार्य जिनके द्वारा हमें सहज ही जन सामान्यों के द्वारा पहचान, प्रशंसा और ख्याति प्राप्त होती है, हम उन कार्यों के लिए अपनी ओर से पहल करते और उनमें अपने को शामिल करने की हामी भरते हैं। हम मानव का ऐसा पेश आना हमारे लिए मानवीय जीवन दर्शन को प्रस्तुत करता है कि किस तरह हम मानव सहज तरीके से अपने लिए प्रसिद्धि और ख्याति की कामना करते हैं, किस तरह हम थोड़ी लागत में अधिक हासिल करने की आशा करते हैं। श्रोताओं, खजूर रविवार की आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे मानवीय मनोभावों के विपरीत हमारे लिए एक उस कटु सत्य को घोषित करता है जहां हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त को मानव मुक्ति हेतु एक कठिनतम कार्य की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते और उसे पूरा करने हेतु आगे बढ़ता हुआ पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं से यह पूछें, अपने दैनिक जीवन के कार्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में हमारे मनोभाव किस तरह के होते हैं? क्या हम अपने कार्यों के लिए अपने को 100% देते और कठिन मेहनत करते हुए उन्हें पूरा करते हैं? अपने कार्यों के निष्पादन में हम दूसरों के संग किस तरह से पेश आते हैं?
जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया पहुँचे तो ईसा ने अपने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुँचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछेड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे यह क्या कर रहे हो, तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहाँ खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो, बछड़ा क्यों खोलते हो? ईसा ने जैसा बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़े को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काटकर फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसान्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसान्ना।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने में इस बात को एहसास करने में मदद करे कि हमारे जीवन के सभी कार्य हमारी मानवीय गरिमा को अभिव्यक्त करते हैं। अतः हम अपने जीवन के छोटे बड़े सभी कार्यों को पूर्ण निष्ठा में पूरा कर सकें, क्योंकि हमारे कार्य के द्वारा ही हम अपने जीवन की सार्थकता को व्यक्त करते और जीवनदाता ईश्वर की महिमा करते हैं। श्रोताओं, नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुखित ईश्वर के सेवक जो स्वयं मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, उनके प्रेरिताई कार्यों के निर्वाहन के कारण उन्हें होने वाले दुख और पीड़ाओं का हाल व्यक्त करता है। नबी इसाइयास उस ईश सेवक की चर्चा करते हैं जिन्होंने मानव मुक्ति हेतु अपने पिता के द्वारा दिए गए प्रेरितिक कार्यों को पूर्ण निष्ठा में पूरा किया। ईश्वर ने शिष्य बनाकर मुझे वाणी दी जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। ये वाक्य हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की प्रेरिताई को व्यक्त करते हैं जहां उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को उन लोगों के लिए समर्पित किया जो विभिन्न रूपों में थके मांदे और बोझ से दबे हुए थे, लेकिन उनके इन कार्यों में उनके अपने ही लोगों ने उनका घोर विरोध किया। लेकिन यीशु ख्रिस्त किसी भी रूप में पीछे नहीं हटे। उन पर झूठा दोष लगाया गया और उन्हें घोर अपमान का सामना करते हुए दर्दनाक मौत की सजा दी गई। श्रोताओ, यह हमारे जीवन की इस सच्चाई को व्यक्त करती है कि दुनिया में भलाई और नेकी के कार्य करना हमें अपने ही लोगों की आंखों में घृणा और तिरस्कार का पात्र बना देता है। हमारे स्वयं अपने ही लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़ा होते और हमें अपने नेक कार्यों का बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। मुक्तिदाता यीशु हमें इस बात की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि उन्होंने घर के स्वामी को बेलजबुल कहा है तो वे तुम्हें क्या नहीं कहेंगे। वे हमें उन लोगों से नहीं डरने को कहते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते लेकिन हमारी आत्मा को छू नहीं सकते हैं। लेकिन कई बार हम अपने शरीर में घावों और पीड़ा होने की चिंता तथा भय के कारण अपने को ईश्वर के न्यायपूर्ण कार्यों से दूर कर लेते हैं। नबी इसाइयास लिखते हैं कि जीवन की ऐसी परिस्थितियों में प्रभु हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम उस जीवनदाता और मुक्तिदाता ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिन्होंने हमें अपने कार्यों में हाथ बटाने हेतु निमंत्रण दिया है। श्रोताओं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र आज हमारे लिए ईश्वर के महान गुणों को व्यक्त करता है जिसके कारण वे हमारे लिए अपने को सभी रूपों में खाली कर देते हैं। संत पौलुस लिखते हैं कि वे ईश्वर के पुत्र थे और उनका पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अपितु दास का रूप धारण कर संपूर्ण जीवन एक आज्ञाकारी पुत्र बने रहे, यहाँ तक कि मरण तक, क्रूस के मरण तक। हम अपने में पूछें कि पुत्र ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वे अपने पिता को प्रेम करते थे, वे सारी मानव जाति को प्रेम करते थे और अपने इसी प्रेम के कारण उन्होंने उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा में पूरा किया। पुत्र ने पिता से मिले अपने कार्य के लिए उनकी कभी शिकायत नहीं की, ना ही उन्होंने कोई आनाकानी या बहाना ही किया, बल्कि उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपने कार्यों को हमारी मुक्ति और अपने पिता की महिमा के लिए पूरा किया। श्रोताओ, खजूर रविवार के सुसमाचार में हमने यीशु को यरूशलेम शहर में एक राजा की भांति प्रवेश करते सुना जहां वे स्वयं अपनी कुर्बानी देने को आगे बढ़ते हैं। यहां हम यीशु को अपने कठिन कार्य से विमुख होता नहीं पाते, लेकिन वे स्वयं इसकी पहल करते हुए अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं कि वे इसकी तैयारी करें। यीशु के यरूशलेम शहर प्रवेश में हम सदैव की भांति उन्हें अपनी नम्रता और दीनता में पाते हैं, जो हमें उन्हें नम्रता और दीनता में अनुसरण करने का निमंत्रण देता है। श्रोताओ, आइए हम खजूर रविवार के इस दिन यीशु के संग यात्रा करते हुए यरूशलेम शहर में प्रवेश करें। हम अपने लिए उनके संग रहने की कृपा मांगें, जिससे हम उनके अनुभवों से अपने को वाकिफ कर सकें, जो हमें उन्हें सांत्वना और धीरज देने में मदद करेगा, जिसके फलस्वरूप हम अपने दुखों और तकलीफों की घड़ी में ईश्वरीय सहचर्य का अनुभव करेंगे।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को इटली के राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल राय के कर्मचारियों से मुलाकात की, जिसकी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने गौर किया कि राय टीवी ने अपनी स्थापना के बाद से हमेशा संत पेत्रुस के उत्तराधिकारियों के कदमों का बारीकी से अनुसरण किया है। उन्होंने राय टीवी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, इन सभी वर्षों में इसने न केवल हमारे समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को देखा है, बल्कि एक समर्थक के रूप में इसने इसे निर्मित भी किया है। अपने संदेश में उन्होंने सेवा एवं जनता शब्द पर प्रकाश डाला। संत पापा ने सेवा के गलत अर्थ से बचने की सलाह देते हुए कहा, सेवा एक ऐसा शब्द है जिससे हम अक्सर इसके साधन होने के अर्थ तक सीमित कर देते हैं, जिसके कारण सेवा देने को सेवा कराने और समर्पण को प्रयोग करने के साथ मिश्रित करने की संभावना होती है। संत पापा ने कर्मचारियों को सत्य की सेवा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सत्य एक है, सामंजस्यपूर्ण है, जिसे निजी अर्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ है भ्रमक कटौती से बचना, नागरिकों के लिए सही जानकारी उपलब्ध करना, पूर्वाग्रह से रहित होना, जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना और बहुलवाद की गारंटी देना, जो विचार एवं स्रोतों की विविधता का सम्मान करता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का हवाला देते हुए संत पापा ने कहा, सच्चाई भले ही हासिल कर लिया गया हो, कभी थोपा नहीं जा सकता, सच्चाई प्रस्तावित होती है। उन्होंने कहा, यही कारण है कि मैं आपसे संवाद विकसित करने, एकता के सूत्र बुनने का आग्रह करता हूँ। संत पापा ने दूसरे शब्द जनता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सबसे पहले इस बात को रेखांकित करता है कि आपका काम आम हित से जुड़ा है, सभी की भलाई से जुड़ा है, न कि केवल कुछ लोगों की भलाई से। इसमें सबसे पहले सबसे निचले तबके, सबसे गरीब, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो त्याग दिए गए हैं, उन पर विचार करने और उन्हें आवाज देने की प्रतिबद्धता शामिल है। पुण्य सप्ताह प्रभु के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर चिंतन करने का सबसे विशेष अवसर है, जिसकी शुरुआत खजूर रविवार से होती है। खजूर रविवार से पहले संत पापा फ्रांसिस ने क्रूस के ख्रिस्ती अर्थ पर प्रकाश डालते हुए कहा, ईश्वर में हमारे क्रूस कहानी के अंत नहीं, बल्कि महिमा के द्वार हैं। यीशु में हर क्रूस पुनरुत्थान की ओर, हर अंधकार प्रकाश की ओर, हर त्याग सहभागिता की ओर ले जाता है। प्राधिधर्माध्यक्ष पित्साबाला का कहना है कि गजा में हालत असहनीय हो गई है। एक इटालियन टेलीविजन से बात करते हुए यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पित्सा बाला कहते हैं कि हर एक जन को स्थिति को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यरूशलेम के लैटिन प्राधिकरण अध्यक्ष कार्डिनल पित्सा बाला ने इताली टेलीविजन स्टेशन टीवी 2000 के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में गजा की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, यह बिल्कुल असहनीय है। हमारे सामने हमेशा हर तरह की समस्याएं रही हैं और यहाँ तक कि आर्थिक वित्तीय स्थिति भी हमेशा बहुत नाजुक रही है, लेकिन पहले कभी भुखमरी नहीं हुई थी। प्राधिता मदश ने कहा, हर धार्मिक, नैतिक और सामाजिक समुदायों को इस हालत को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने शुक्रवार को संत जॉर्जियो पदुआ में सिनेमा फॉर क्रिएशन अर्थात सृष्टि के लिए सिनेमा उत्सव के निदेशक श्री पियर्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म टुगेदर अलोन द सरप्राइज ऑफ फ्रांसिस की स्क्रीनिंग पर प्रतिभागियों को एक वीडियो संदेश भेजा। अपने संदेश में कार्डिनल पारोलिन ने व्यक्त किया कि इस आयोजन का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष रूप से प्रासंगिक है, सौंदर्य और प्रेम से पोषित ताकतें जो दुनिया को बचाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में संघर्ष, स्वार्थ, उदासीनता और दूसरों की बात सुनने की असमर्थता की विशेषता है। एक साथ सहयोग करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने अक्सर हर चीज पर परस्पर संबंध पर जोर दिया है, जो हमें धीरे धीरे जागरूकता की ओर ले जाता है कि हम प्रत्येक अन्योन्याश्रित मानव परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के साथ साथ हमारे दैनिक व्यवहार में भी बदलाव की मांग करती है और इन्हें हमारे सामान्य घर के सावधानी पूर्वक प्रबंधन की ओर उन्मुख होना चाहिए। हमारे सामान्य घर की देखभाल न केवल पर्यावरण से संबंधित है, बल्कि ईश्वर और हमारे पड़ोसी के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से भी संबंधित है। कार्डिनल पारोलिन ने कार्यक्रम के आरंभकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्हें अभिन्न पारिस्थितिक रूपांतरण के इस पथ को खुशी से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए अपना संदेश समाप्त किया। उधर परम धर्म पीठ और जर्मन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने जर्मनी में धर्म सभा यात्रा पर वाटिकन में एक दिन की वार्ता के अंत में शुक्रवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान के अनुसार रोमन कूरिया के प्रतिनिधियों ने नवंबर 2022 में जर्मन धर्माध्यक्षों की अदलिमिना यात्रा के दौरान शुरू हुई बातचीत को जारी रखने के लिए कई जर्मन धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। चर्चाएं जर्मनी में कैथोलिक कलीसिया के धर्म सभा पथ के दस्तावेजों में उठाए गए कुछ खुले धार्मिक प्रश्नों पर केंद्रित थी। प्रतिनिधि नियमित आदान प्रदान के माध्यम से अपनी बातचीत जारी रखते हुए सहमत हुए ताकि मतभेदों और समझौतों को संबोधित किया जा सके। उधर वाशिंगटन और यरूशलेम के बीच संबंधों के तनावपूर्ण समय में अमेरिकी विदेश मंत्री अंतोनी ब्लिंकन इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। वे गाजा में सहायता देने के लिए इजरायलियों पर दबाव डाल रहे हैं। वे इजरायल को रफाह पर जमीनी आक्रमण की अपनी योजना को अंजाम नहीं देने की चेतावनी भी देंगे, जहां 10 लाख से अधिक नागरिकों ने शरण ली हुई है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि युद्ध विराम समझौता गाजा पट्टी के लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है, जहां 5 महीने से अधिक के संघर्ष के बाद पानी, भोजन और दवा की भारी कमी है। इस बीच 36 देशों और संगठनों के अधिकारियों ने अधिकतम सहायता देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए साइप्रस के द्वीप में मुलाकात की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।